हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मुराद ने अभी तक गाड़ी ड्राइव शुरू ही की थी। वो थोड़ा ही आगे आया था कि उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन पर देखता है तो सामने से अहमद का कॉल आ रहा था। उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलो। अहमद कहता है, मुराद तुम कहाँ हो, रियाज भाई तुम्हें बुला रहे हैं। जब मुराद कुछ देर तक कुछ नहीं कहता है तो मुराद को अपने फ़ोन पर रियाज की आवाज़ सुनाई देती है। मुराद के चेहरे पर घबराहट आ गई थी और उसका दिल कांपने लगा था। वो घबराते हुए इनायत को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर भी घबराहट थी। जी भाई, ठीक है भाई, ये कहते हुए मुराद ने फ़ोन काट दिया। इनायत घबराते हुए मुराद को देखती हैं और हकलाते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या हुआ। मुराद एक गहरी सांस लेता है और इनायत से कहता है, रियाज भाई ने हम दोनों को अभी इसी वक्त अपने ऑफिस में बुलाया है। अपने आदमियों से कहो कि उसे गोदाम में ले जाए और उसे जान से मार दे। इनायत की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और दिल बाहर आने को होता है। उसकी धड़कन भाग नहीं रही थी बल्कि अब बंद हो चुकी थी जब उसने रियाज के शब्द सुने। इसका मतलब, अगर मुराद ने सही वक्त पर जिब्रान को नहीं छोड़ा होता तो अब तक रियाज के आदमी उसे मार चुके होते। मुराद जल्दी से बात को संभालते हुए कहता है, भाई वो आदमी हॉस्पिटल में है, दरअसल मैंने उसे बहुत मारा और उसकी हालत इस समय बिल्कुल मरने जैसी ही है। रियाज घूरते हुए उन दोनों को देखता है और मुराद से कहता है, मुझे वो आदमी जिंदा नहीं चाहिए, समझ गए। मुराद जल्दी से हाँ में सर हिलाता है तो रियाज अपने हाथ की उंगली से उसे बाहर जाने का इशारा करता है। जैसे ही मुराद वहाँ से बाहर जाने को हो रहा था, इनायत घबराते हुए मुराद को देखती है। मुराद उसे आंखों से शांत रहने का इशारा करता है। मुराद कमरे के बाहर चला जाता है और उसके जाने के साथ ही रियाज जल्दी से इनायत को अपने सीने से लगा लेता है। इनायत का पूरा शरीर एकदम सुन पड़ा हुआ था, वो सिर्फ सांस ले रही थी, बाकी जिंदा रहने लायक उसके अंदर कोई हरकत नहीं हो रही थी। आई एम सॉरी जान, तुम्हें ये सब फेस करना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तो मैं कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानता और सिक्योरिटी को कभी भी तुमसे दूर नहीं करता। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें आज ये सब कुछ देखना पड़ा। दरअसल मेरा एक असाइनमेंट आने वाला था पर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई और मुझे जो फ़ायदा होने वाला था वो नहीं हुआ। बस इसी बात का मुझे फ्रस्ट्रेशन था। मैं इतनी टेंशन में था कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आई कि जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि थोड़ी देर तुम्हारे साथ रहकर कुछ सुकून के पल बिता सकूँ। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। इनायत कुछ बोल ही नहीं रही थी। रियाज उससे अलग होता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लेता है। वो मुस्कुराते हुए इनायत की आंखों में देखकर कहता है, तुम मेरे लिए सुकून हो, तुम मेरे लिए वो दवा हो जो मुझे हर दर्द से बाहर निकालती है। 2 मिनट तक रियाज इनायत के साथ ही था, उसके बाद उसने मुराद को अंदर बुलाया। मुराद जैसे ही अंदर आता है, रियाज कहता है, इनायत को घर छोड़ दो, उसके बाद तुम ऑफिस आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इस वक्त मुराद को लग रहा था ये 5 मिनट उसने केबिन के बाहर कैसे बिताए थे वही जानता था। उसे लगा रियाज केबिन के अंदर इनायत को डांट रहा होगा या फिर उसे धमका रहा होगा, लेकिन जब वो केबिन के अंदर आया तो रियाज मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था। पर रियाज की बात सुनकर तो मुराद और इनायत दोनों हैरान हो गए। इसका मतलब रियाज उसे घर जाने के लिए कह रहा था, इसका मतलब दोनों अब इस खतरनाक डर से बाहर हैं। उन दोनों के लिए तो ये जैसे एक दूसरा मौका था। बिना एक पल का समय गवाए वो दोनों जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिना किसी बात के और बिना कुछ सुने ही वो लोग इस जंगल से बाहर निकल गए हैं। उनके लिए ये बहुत राहत की बात थी। वो दोनों केबिन के बाहर अपना कदम रखते हैं और खुशी से उनका दिल भर जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे कदम बढ़ाते हैं वैसे ही पीछे से रियाज की आवाज़ आती है, उसका नाम क्या था जिसने इनायत के साथ बदतमीजी की है। रियाज का चेहरा सख्त था क्योंकि वो इस इंसान को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था जिसने इनायत के साथ मिसबिहेव किया था। लेकिन रियाज की बात सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और जो डर अभी अभी उनके दिल से निकल रहा था वो दोबारा आ जाता है। वो घबराकर पीछे देखते हैं और रियाज को देखने लगते हैं। मुराद डरते हुए पहले तो इनायत को देखता है। उसने जल्दी से रियाज को देखते हुए कहा, भाई उसका नाम जिब्रान है। इनायत का चेहरा फिर से घबराहट से भर गया था और पसीने फिर से उसके माथे पर आने लगे थे, क्योंकि उसके सामने दो चीज थीं जो वो रियाज के सामने नहीं लाना चाहती थी। पहले तो था जिब्रान का नाम और दूसरा जिब्रान का उसके साथ रिश्ता। इसमें से पहला डर उनके सामने आ चुका था। जिब्रान का नाम रियाज को पता चल गया था। रियाज हैरानी से मुराद को देखते हुए कहता है, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? भाई, भाभी ने बताया है कि वो शख्स जिब्रान है, वो भाभी के पालघर वाले घर के पास रहता था। मुराद सच नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि वो कब झूठ बोलने के चक्कर में रियाज के सामने सच बोलता चला गया। तभी रियाज के फोन पर एक बीप बजती है। रियाज अपना फोन उठाता है और उसमें देखने लगता है। ये एक वीडियो थी जो उसके सामने आई थी। वो वीडियो को प्ले करता है और दूसरे हाथ से उन दोनों को जाने के लिए कहता है। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें लगा रियाज को एक बहुत जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वो दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। तेज कदमों से होते हुए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो लोग लिफ्ट में दाखिल होते हैं, लिफ्ट बंद ही नहीं होती है। मुराद ने दो तीन बार कोशिश की, लेकिन लिफ्ट बंद नहीं होती है। मुराद हैरान हो जाता है और हैरानी से इनायत को देखने लगता है। इनायत भी हैरान हो जाती है और मुराद से कहती है, ये क्या हो रहा है मुराद, लिफ्ट बंद क्यों नहीं हो रही है? मुराद कुछ सोच पाता कि तभी वहां पर रियाज की सिक्योरिटी आ जाती है और वो मुराद से कहती है, मुराद सर, मालिक ने आपको केबिन में बुलाया है मैडम के साथ। मंजिल अभी दूर है, खतरा भी टला नहीं है। दोनों अभी भी रियाज के ऑफिस में ही हैं। इसका मतलब वो दोनों अभी भी डेंजर जोन में हैं। ऊपर से रियाज की सिक्योरिटी उन्हें लेने आई है।